शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे जो भोग लगा उसमें संदेशी ने क्या कहा कि ईस्टर्न जोन जिसके अंदर नेपाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पता नहीं कितने कितने स्टेट्स आते हैं, तो बाबा ने कहा वो सबसे बड़ा जोन तो है ही। उसके साथ साथ ये साकार बाबा और निराकार बाबा दोनों का ही प्रैक्टिकल में जो बाबाओं ने काम किया उसका यादगार है। और फिर क्या कहा कि देखो, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा कलकत्ता में ही थे, ज्वेलर, और उसके बाद सारे विश्व में जो बाबा ने ज्ञान दिया, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का नदी, सबसे बड़ी नदी जो है भारत के अंदर, और नदियों के नाम माताओं पर हैं, लेकिन ब्रह्मापुत्रा साकार बाबा के ऊपर है। फिर बाबा ने कहा गंगा सागर भी जो है, जो सबसे बड़ा कहा जाता है, सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार ही काफी है, वो भी ईस्टर्न में ही है। डायमंड हार्बर भी ईस्टर्न में ही है, और सूर्य जो है वो भी हमेशा कहां से निकलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले भगत लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं उठकर, और फिर गंगा जल की हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न जोन के आए हुए भाई बहनों को सूर्य नमस्कार करता हूं। अवश्य ही बाबा ने आपको ईस्टर्न जोन में रखा है तो विशेषता देकर रखा होगा, और इतना बड़ा जोन, बड़े का तो वैसे ही नाम होता है। दुनिया में अमेरिका भी देश है, सिंगापुर भी देश है। अब सिंगापुर है तो देश, पर नाम मात्र का ही हुआ ना, इसलिए अपने इतने बड़े जोन और साकार बाबा और निराकार बाबा द्वारा सेवा के प्रारंभ और उसके भक्ति मार्ग के यादगार को स्मृति में लाकर, क्योंकि आज बाबा ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मृति, जोर से अपने लिए ताली बजाइए। ठीक है, अब देखिए हमको टॉपिक कितना अच्छा मिला है। कौन सा टॉपिक मिला है? समाप्ति। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि दुख की समाप्ति हो, अशांति की समाप्ति हो, चिंता की समाप्ति हो, बुराई की समाप्ति हो, तो सूर्य निकलने से क्या होता है, रात्रि की समाप्ति हो जाती है। तो ईस्टर्न में तो बाबा कहता है कार्य ही शुरू हुआ है, इसलिए समाप्ति कैसे होगी, जितना सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा तो रात्रि अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभी हम गीत सुन रहे थे, तो गीत क्या कह रहा है और हम सब क्या चाहते हैं। पहली बात तो हमें पक्का ये पता है कि आज के दिन इसी समय पर और इसी स्थिति में हम सब पहले भी इकट्ठे हुए थे। कई भाई बहन पहली बार आए होंगे, पहली बार कौन कौन आए हैं जरा हाथ उठाइए। हर बार पहली बार तो आते हैं, फिर भी वास्तव में तो आप पहली बार नहीं आए, क्लब पहले भी आए हैं और आते ही रहेंगे। हर क्लब आपको आपने अपना पार्ट बांध लिया कि हम यहां पर अगले क्लब भी इसी दिन इसी प्रकार से आएंगे, ये तो पक्का हो गया। इसलिए ड्रामा किसको कहते हैं कि जो इस घड़ी हो रहा है उसकी चाबी आपके हाथ में है। जब ये घड़ी गुजर जाएगी तो ड्रामा हो जाएगा, ये तो सीधी बात है ना। अब आप यहां आ गए ठीक टाइम पर तो अगले कल्प लगातार अनगिनत बार आपने अपना ड्रामा बना लिया कि हम यहां पर आएंगे, पक्का हो गया। अगर कोई आत्मा सोचती है कि चलो एक घंटे बाद जाएंगे हॉल में, तो उसका क्या होगा, ये ड्रामा खत्म। तो बाबा ने कहा है ड्रामा की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन वर्तमान में घुमा लो, अदरवाइज वो ड्रामा बन जाएगा। इसलिए बाबा का कहना है अभी नहीं, पता है ना हमें, अभी नहीं तो जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अब करो। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द एक्टर के लिए क्या है, अब ठीक है, ना आगे ना पीछे, अब। अच्छा अब क्या करना हमें, तो सब यही चाहते हैं कि हम बाप समान बने। हमारा क्या लक्ष्य है, बाप समान बने। जो समझते हैं कि हमारा लक्ष्य है और बातें छोड़ो बाप समान बने, दिल से समझते हैं वो जरा हाथ उठाइए, बाप समान। क्योंकि बाबा देखेगा मेरे इतने बच्चे मेरे समान बनना चाहते हैं तो कोई तरीका बताएगा, बहुत अच्छा। अच्छा अब जिसके समान बनना है उस क्या करना पड़ेगा, उसी की स्थिति में आना पड़ेगा, ठीक है। जिसको वो लोग कहते हैं सिंहासन या आसन, लेकिन वास्तव में क्या है, हमारी स्थिति ही हमारा आसन है। इस वक्त आप कौन से सिंहासन या आसन पर बैठे हैं ये निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। आप चाहें तो शानदार अपने समान के सीट पर सेट हो जाएं, आप चाहें तो थोड़ा नीचे आ जाएं, और आप चाहें तो जैसे भगत होता है, तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यासे हम। अब किसी को बूंद मिल जाए तो प्यास बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुमको मटकियां दी, हमारी यादगार क्या है कि गोपियां जो थी वो मटकियां भरती थी। सुबह भी कहा गया कि सागर को गागर में समाना है, जो भी स्नान करते हैं अपने लिए कुछ लोटी भर के ले जाते हैं। फिर वो पानी की मटकियां दूध की मटकी में बदल गई। श्री कृष्ण जी को क्या दिखाते हैं कि उसकी माता मक्खन निकाल रही है, पानी से थोड़ी मक्खन निकलता है। तो इसलिए मटकियों वाले हैं वो बूंद के प्यासे तो हो नहीं सकते। पर हमारी अगर स्मृति भूल जाए कि हमें भगवान दूध की नदियां बहने वाली दुनिया में ले जा रहा है और वो दूध को कैसे रखा जाता है, तो फर्क पड़ जाता है। आप दूध को लाएं, आप पहले तो दूध को देखते हैं कैसे रखना है, मौसम कैसा है, उसको किस तरह से संभाल के रखना है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपको भी दूध को संभाल के रखना। और जहां तक निश्चय का सवाल है, सबसे बड़ी बात है निश्चय कि हमको कौन ले जा रहा। अपनी शक्ति से कोई भी आत्मा अपनी ताकत से कितनी भी कोशिश कर ले तो त्रेता के ऊपर नहीं जा सकते। सीधी बात समझ लीजिए, जब आप अपनी शक्ति लगाएंगे तो त्रेता तक जा सकते हैं, लेकिन अगर बाबा के हाथ पकड़ ले अर्थात अपनी बुद्धि को बाबा के समर्पित कर दे तो आपको वो ले जाएगा। तो अपनी मेहनत से साइकिल चला के चलना अच्छा है या बाबा के प्लेन में या रॉकेट में बैठना अच्छा है? तो स्मृति की बात है ना। इसलिए कहते हैं कि एक बार एक जगह पर बहुत अच्छा रॉयल फैमिली थी, तो उनके बड़े नियम होते थे कि हमारे घर में जो दूसरी परिवार आएगा वो भी वैसा ही होना चाहिए, बुद्धिवान शक्तिवान रॉयल। तो उन्होंने किसी और परिवार, उसी तरह के परिवार ने कहा हम आपके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, अर्थात अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आइए। तो उन्होंने सोचा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, वो तो ऐसे ही होते हैं बेचारे, थके थकाए, शरीर उनका चलता नहीं, बुद्धि उनकी डल होती है। तो उन्होंने फैसला किया कि हम सिर्फ यंग लोगों को ले जाएंगे अपनी बारात में। एक उनमें बुजुर्ग था, उसने कहा ये कहीं बेचारे फंस ना जाएं, वो सोचा मैं भी जाऊं, तो ट्रंक के अंदर छिप करके वो चला गया। अच्छा, अब जहां वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी देखिए यहां खड़े हो जाइए, ये हमारे घर के आगे एक झरना बह रहा है पानी का, इसको आप दूध से भर दोगे तब हम ये आपके साथ संबंध जोड़ना मंजूर करेंगे। अब वो यंग लोग थे, सोचने लगे झरना बह रहा है, इतना दूध कहां से लाएंगे, क्या अरेंजमेंट करें, उनकी बुद्धि चलने लग गई। काफी सोच सोच कर वो थक गए कि इतना दूध कहां से लाएंगे यहां पर जो ये झरना दूध का बहना शुरू हो जाए। फिर उनको उस बुजुर्ग की ख्याल आई कि हमने गलती की, उसको लाए नहीं। वो भी सुन रहा था, वो ट्रंक से निकल के बाहर आ गया, बोला बेटा बच्चों क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो ना दूध से भरना है। उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वहां गया, वो हैरान सब यंग पर्सन के भी, अब क्या होगा, ये क्या कैसे भरेगा। उन्होंने कहा चलो। अब वहां जाके बोला कि देखिए हम दूध से इसको भरने को तैयार हैं। सब हैरान, वो भी जिन्होंने मांग की थी वो भी हैरान। तो उसने कहा ठीक है हम दूध से भरने को तैयार हैं, पहले आप इसको पानी से खाली कर दो। समझ में आया? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा आप आइए, आपसे हम रिश्ता कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि बाबा ने हमको इतनी तीनों कालों की बुद्धि दी हुई है, तीनों लोकों का ज्ञान दिया हुआ है कि जिसको प्रश्न कहते हैं या रास्ते की रुकावट कहते हैं वो हमारे पास नहीं आ सकती। केवल हमने शिव बाबा को साथ रखना है, ये नहीं सोचना कि हम अपने आप कर लेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी, क्योंकि माया जो परीक्षा लेती है वो नहीं लेती है, बीए वाला पेपर एमए वाले को नहीं आता। तो बच्चे क्या सोचते हैं, पहले तो छोटी बात थी, इतनी बड़ी बात आ गई, ये भूल जाते हैं कि ये तो पेपर है, ये आएगा तभी तो हम अगली क्लास में जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं चाहूं तो कुछ भी कर दूं, समाप्ति भी अभी ले आए बाबा, संपूर्णता भी ले आए, लेकिन कर्म का ज्ञान क्या है, जो करेगा सो पाएगा। अब बताइए हमको करना है या बाबा को करना है, माया से युद्ध हमारी है या बाबा की है? हमारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक मोटा शब्द जो हमको याद रखना है वो क्या है, हिम्मत। तो हिम्मत की बजाय अगर हम घबरा जाएं तो बाबा का निश्चय हुआ हुआ नहीं हुआ। तो जिस गीत हम गाते हैं जिसका साथी है भगवान गाते हैं ना, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन छोटी सी आंधी तूफान आ जाए तो भगवान का तो साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं आंधी आ गई तूफान आ गया अब क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सहज मार्ग है, जो परमात्मा की छतर छाया है, जिसके आधार पर हमको संपन्नता और संपूर्णता पानी है, जिसके आधार से हम यहाँ की सब चीज को कंप्लीट करेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं फिर परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, परेशान वो होता है, कौन होता है, जो अपनी शान से परे होता है। ठीक है, तो आपकी शान क्या है, हमारी शान क्या है, कि अपनी स्मृति में रहना और अपने बाप के हाथ पकड़ के रखना, बस और कुछ नहीं करना। फिर बाबा कहते घबराता कौन है, घबराता वो है जो गहराई में नहीं जाता है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि सागर के ऊपर ऊपर तूफान होंगे, लहरें होंगी, ऊपर जाओगी भी तो छोटी छोटी सीपियां मिलेंगी, अगर सागर के तले गहराई में चले जाओगे तो वहां बिल्कुल शांत एकांत, और वहां पर आपको क्या मिलेंगे, हीरे ज्वारात मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तो घबराना भी नहीं है और परेशान भी नहीं होना है। तो क्या किया जाए, क्यों होते हैं, अब आप आइए कि शांति कहां है, पक्की शांति जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके वो कहां है, कहां पर है शांति, शांति धाम कौन सा है, शांति शांति धाम में है ना। अच्छा, अगर हम ये जान जाए कि हम हैं ही शांति धाम, बाबा ने कहा हुआ है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, हमारा परमानेंट एड्रेस सतयुग नहीं है, हमारा परमानेंट एड्रेस संगम भी नहीं है, हमारा परमानेंट एड्रेस माउंट आबू भी नहीं है, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, परम धाम। वो कभी नहीं हिलेगा, आपकी वहां जो सीट है फिक्स है पक्की, सारा चक्कर लगा लो आपका परमानेंट घर को ना कोई ऑक्यूपाई करेगा, ना कोई उसको छीनेगा, ना कब्जा करेगा। अच्छा, हम रहने वाले वहां के, और फिर हमारा स्वरूप क्या है, हम रोज बोलते हैं ओम शांति, तीन बारी आज भी बोला ओम शांति, जानकी दादी जी आएंगे वो आपको फिर तीन बारी याद कराएंगी ओम शांति, मैं कौन हूं, किसका हूं, क्या करने आया हूं। तो जो ही हमने अपने परमानेंट को भूला और टेम्परेरी में आ गए तो आपको अशांति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमको परम धाम में जाकर शांति प्राप्त करनी है, नहीं, हमको पक्का रखना है कि हम उस शांति धाम के रहने वाले हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है सिवाय बाबा ने बच्चों को ज्ञान दिया कि तुम मेरे बच्चे परम धाम के रहने वाले हो, और अब तुम्हें परम धाम बिल्कुल जाना ही है, नजदीक आ गया। तो इसलिए जहां जाना है वहां की तो तैयारी पूरी करनी है कि नहीं, इसलिए अशांति तो अब हमारे से कोसों दूर भागनी चाहिए। अशांति क्यों होती है, बाबा ने बताया हुआ त्याग तो सबने कर लिया, और त्याग का भाग्य है जो हम यहां बैठे हैं, जिन्होंने त्याग नहीं किया वो दुनिया में है दुख भोग रहे हैं। लेकिन जो दूसरा शब्द है तपस्या, अब तपस्या का मतलब क्या है, अब देखिए सूर्य है, भगवान की महिमा ज्ञान सूर्य से भी की जाती है, और सागर भी है, परमात्मा की तुलना सागर से भी की जाती है। फर्क क्या है कि सूर्य इतना तपा हुआ होता है, गर्म होता है, उसके नजदीक कोई आंधी तूफान हवा मिट्टी कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि वो तपा हुआ है, वो दे सकता है अपनी लाइट और हीट, उसको किसी से कुछ लेने का नहीं है। सागर बहुत फैला हुआ होता है लेकिन शुद्ध करके पानी भेजता है और वापस उसको फिर वो अशुद्ध मिलता रहता है, तो इसी में लगा रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तपस्या शब्द का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, कोई भट्टी नहीं है। तपस्या का अर्थ यह है कि आप जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुसार शांति में रहो, संतोष में रहो, प्रेम में रहो। ऐसा ना हो, ज्ञान हमको बहुत है लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए जो ज्ञानी होकर हम डिस्टर्ब हो जाएं। होता क्या है, आपको सफेद कपड़े पसंद है, सफेद कपड़े बहुत पसंद है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर तो आजकल कचरा ही है, तो आप वहां गए कचरे में और आपने सोचा हा 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 कहां आ गए, भागो यहां से जल्दी। तो आप सारा ज्ञान होते हुए सफेद होना अच्छा है, आप परेशान हो गए ना, उतनी देर तो परेशान रहे। इसीलिए अगर आप ये समझो कि मैं वो हूं जिसके ऊपर मिट्टी चढ़ ही नहीं सकती, मैं तो आत्मा हूं, ये तो शरीर है, ये तो शरीर वैसे भी छोड़ना ही है। कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में, होली आई थी तो होली के दिन सब पुराने कपड़े पहन लेते हैं कि भी कोई खराब भी करेगा तो कोई नुकसान ना हो। इसलिए जो ही हमने अपना जिसको कहते हैं स्वरूप की स्मृति छोड़ी, हमको कष्ट हुआ, वो मैल हमें लगा नहीं, कपड़े को लगा है, लेकिन हमने समझ लिया मैं मैला हो गया क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। कौन के कोई कहेगा देखो इसके कपड़े कितने खराब हैं। तब करके बाबा कहते हैं जिसको हम बाप समान कहते हैं, बाप समान कौन से बाप के समान, शिव बाबा के समान बनना हमने या ब्रह्मा बाबा के, बताइए हैं? हाँ, क्योंकि शिव बाबा के समान तो हम बन नहीं सकते, शिव बाबा के साथ तो हमारा पार्ट भी ज्यादा नहीं है। वो तो हमको जैसे होता है ना, धोबी धुलाई करके साफ कर देता है, या बाबा कहते हैं मैं तुमको भट्टी में चढ़ा के प्योर कर देता हूं, आगे तो तुम्हारा काम है ना, तो वो ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा के समान बनने का मतलब क्या हुआ, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम करें। बाबा कहता है फॉलो करना भी नहीं आता। दुनिया को हम कहते हैं कि देखो गुरु सन्यासी चेला गृहस्थी, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर गुरु को फॉलो करना है तो आप भी सन्यासी बनो। अब ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर का मतलब क्या है, कईयों को ये भी डिफिकल्ट लगता है ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर कैसे बनेंगे। तो बाबा कहता है देखो आज की दुनिया के जो अंधे हैं, जिनकी आंख नहीं है, नेत्रहीन है, सूरदास है, वो भी फॉलो करके कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा जो नेत्रहीन होते हैं वो लाठी लेके चलते हैं और अगले वाले की लाठी की आवाज के पीछे पीछे चलते रहते हैं, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यानी नेत्रहीन को भी फॉलो करना आता और वो इससे अपना सारा जीवन चलाते हैं। अब बाबा कहते आप कौन हो, आप तो त्रिनेत्री हो, आगा पीछा सब जानते हो, भगवान ने आपको तीसरा नेत्र दे दिया और कर्तव्य करके दिखाया। कि ये नहीं कि परमात्मा ने कहा, नहीं, परमात्मा ने जो कहा उसको आसानी से करके दिखाया। क्या हम उनको फॉलो भी नहीं कर सकते? अच्छा, फिर बाबा ने एक और भी एग्जाम्पल दिया है, फोटोकॉपी की मशीन। अब फोटोकॉपी की मशीन तो सबको पता है, आप कोई भी चीज की जितनी मर्जी फोटोकॉपी निकाल लो वैसी की वैसी निकल जाती है, और अगर कलर्ड फोटो का निकालो तो बिल्कुल वैसी निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं आप ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते क्या, बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो कहते हैं कि बहुत आसान है, फोटोकॉपी कर ली जैसा का तैसा आ गया, वो जरा हाथ उठाइए, फोटोकॉपी मुश्किल है क्या? मधुबन में क्या है, सबसे बड़ी फोटोकॉपी मशीन है, यहां जितनी मर्जी फोटोकॉपियां करवा के ले जाओ, हर चरित्र की कॉपी करा के ले जाओ, ऐसी परिस्थिति में ये, ऐसी परिस्थिति में ये। अब आ गई बात जो जरा हमें धोखा दे सकती है। वो धोखा दे सकने वाली बात क्या है, एक होता है तन, एक होता है मन और एक होता है धन, ठीक है। تن سے بابا کے بننا مشکل نہیں ہے، دھن سے بھی بابا کے بننا مشکل نہیں ہے، لیکن من سے ہر وقت بابا کے بننا اس میں کٹھنائی آ جاتی ہے۔ اسی لیے بابا نے ہمیں مہا منتر کیا دیا ہے، تن منا بھو دیا ہے، دھن منا بھو دیا ہے یا من منا بھو دیا ہے؟ من منا بھو دیا، کیوں دیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو من منا بھو ہے، جب تک من منا بھو نہیں کریں گے تو باپ سمان نہیں بن سکتے، اور جب کر لیں گے تو باپ سمان ہے۔ آپ انبھو کر لو، جس سمے آپ من منا بھو ہوتے ہیں اس سمے آپ کی شکتی، آپ کی سکھ، آپ کی سنتشٹتا کیسی ہوتی ہے، اور جب من منا بھو سے دوسرے میں من کہیں لگ جاتا ہے تو سب کھو جاتا ہے۔ جیسے آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، آپ کا اڑا کے لے گیا، آپ کو اتنے سارے نوٹ ملے، آپ نے پکڑے، بڑے خوش ہیں آپ، لیکن ہوا آئی پھیل گئے تو آپ چگنے لگ جاؤ گے، لوگ ہی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس لیے من بنا بھو یہ امپورٹنٹ ہے، اور کیول بابا کے بچوں کو ہی من کو لگانے کا، من کو سفل کرنے کا، من کے دوارا سیوا کرنے کا پتا، اور دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہے۔ سوشل ورکر ہوں گے، تن سے سیوا کر سکتے ہیں، دھن سے کر سکتے ہیں، من سے سیوا کیا ہوتی ہے وہ اپنی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بابا کہتے ہیں مہا منتر مول منتر ہے من منا بھو، کیونکہ من آتما کے اندر ہے، تن باڈی کانشس ہے، اور دھن بھی سنسارک چیز ہے۔ ہمارا دھن دوسرا ہے، ہمارا دھن تو گنوں کا دھن ہے، ارے گیان کا دھن ہے، سنتوش کا دھن ہے، سہیوگ کا دھن ہے، سنیہ کا، بہت سارے دھن ہیں، سمے کا دھن ہے، لیکن وہ دھن جو ہے شریرک نہیں ہے۔ اس دھن کو یوز کر کے ہم یہ دھن اکٹھا کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، آتما کی چیز آتما کے ساتھ جائے گی، شریر کے یہیں رہ جائے گی۔ تو بابا نے ہمیں بتایا، اس لیے من منا بھو، اور اس کے ساتھ پھر اور کیا ہے، مام ایکم، ٹھیک ہے۔ اب مام ایکم تھوڑا اور بھی زیادہ آگے چلنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں پانچ شبد ہمارے پرسدھ ہیں، سب کو پتا ہے۔ پہلی بات ہے ایک نامی، ایک نامی تو سنا، اچھا ایک نامی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیول ایک کو جان کر کے اس کے ساتھ سمبندت رہنا، اور وہ ایک کون ہے؟ جو سرو شکتیوان ہے، جس کے آگے مایا تو نزدیک ہی نہیں آ سکتی، سوریہ کی طرح ہے، اندھیرا آ نہیں سکتا۔ اب اس ایک نامی کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں، گاتے ہیں، میرا تو کیا، میرا تو شیو بابا ایک۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے شنکر میرا، وشنو میرا، نا، میرا تو شیو بابا ایک، سب کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا پیرا کیا ہے، دوسری لائن کیا ہے؟ میرا تو شیو بابا ایک، اگلی لائن کیا ہے؟ ہاں، اب اس میں سوچئے ذرا کہ ہم کہتے ہیں شیو بابا بھی میرا رہے، دوسرے بھی میرے رہیں، تو گڑبڑ ہو گئی نا، تو من منا بھاؤ تو ہوا نہیں۔ تو جو ہی آپ بڑھیا چیز کے اندر چھوٹی ملائیں گے تو ملاوٹ ہو گئی، وہ پیورٹی تو رہی نہیں۔ من کے اندر جو بابا کہتا آپ کی سمرتی رہنی چاہیے، تو ہماری سمرتی کیا ہے؟ ایک نامی۔ اس سمرتی کے اندر اگر ہم دوسری سمرتیاں بھی رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ملاوٹ ہو جائے گی۔ سو ستیتا کے ساتھ پوترتا بھی ہوتی ہے، تو ستیتا تو ہمیں پتا ہے، لیکن ستیتا کو اوپر قائم رہنے کے لیے ملاوٹ تو دور کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے پہلی بات ہے ایک نامی، تو دوسرے کی نام نہیں آنا چاہیے، شریر بھی اپنے کا نہیں آنا چاہیے، سب سے پہلا۔ دوسرا یہ ہے، اگر آپ نے اپنے شریر کے دوارا اپنی وشیشتاؤں کو، अपने गुणों को, अपनी जो उपलब्धियां हैं या अपनी कमजोरियों को जोड़ा, तो फिर वो एक नाम ही नहीं रहेगा। आगे चलो, दूसरा बाबा क्या कहता है, एकांत। अब एकांत का क्या मतलब है? एक के अंत को जानकर उसमें रहना। तो एकांत हमारा कौन फील कर सकता है? मन फील कर सकता है या तन फील कर सकता है? मन, मन सारे दुनिया के अंदर रहता हुआ भी बेहद का वैरागी रह सकता है, लेकिन तन, आप जानते हैं इस वक्त ईस्टर्न जोन के कारण मधुबन में कितने भाई बहन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अगर आप तन के हिसाब से देखेंगे तो आपको भीड़ भीड़ लगेगी, यहां जाओ भीड़, यहां जाओ भीड़, बैठने में भीड़, खाने में भीड़, आप परेशान हो जाओगे कि जल्दी से पूरा करें, कहीं तो आते ही नहीं डर के मारे के भीड़ होगी। अब बाबा कहता है भीड़ तो भीड़ के अंदर संतुष्ट रहना, यही तो बात है। अब भीड़ के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कहीं आप पीछे रह जाते हैं, कभी भोजन खत्म हो जाता है, कभी कुछ, उसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं है तो बॉडी कॉन्शियस है, नहीं तो आप एकांत है। आत्मा को कौन सी भूख लगती है? आत्मा को आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं जितना कम खाओ उतना अच्छा रहते हैं, हल्के रहते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरों को देखते हैं, स्थान को देखते हैं, फिर अपने बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति वहां सेंटर में इतना सहयोग करता हूं, मुझे खाना भी नहीं मिला ठीक तरह, गया काम से छुट्टी। इसलिए ये जो कहते हैं एकांत, तो एकांत का मतलब है उस एक के अंत में रह करके, पहला तो एक नामी, फिर एकांत, फिर बाबा क्या कहता है, एकाग्र। सारे आग्रह एक से ही करने हैं, एक रस सारे, ऐसा नहीं कि आपको एक रस में रहना है, लेकिन सारे ही रस एक से लेने हैं। और एंड में बाबा कहता है एकानामी, अर्थात इकोनॉमी का मतलब होता है बचत। तो बचत किस चीज की? यहां पर केवल बचत भी नहीं है, बचत करके उसको यूज करना है। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी भी किस चीज की है? समय की इकोनॉमी है। समय की इकोनॉमी का मतलब हुआ संकल्पों की इकोनॉमी है। फिर वो बात मन पे आ जाएगी कि आपका मन कितने संकल्प करता है और कितने उसको करने चाहिए, सीधी बात है। बाकी चीजों से इसका कनेक्शन है। अगर आप एक नामी रहेंगे, एकांत में रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, एक रस रहेंगे, तब एकानामी होगी। अब आप सोच लो सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है। सतयुग में आपको संकल्प करना ही नहीं पड़ता, जिसको कहते हैं ना संकल्प सिद्धि, अपने आप वो चीज सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रकृति को जीता हुआ है, मन को जीता हुआ है, इंद्रियों को जीता हुआ है, तो वहां तो आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं। लेकिन समझने के लिए ये समझ लो, एक संकल्प से एक सिद्धि, इसको कहा जाता है संकल्प सिद्धि। जिस वक्त जो आपको चाहिए वो अपने आप उसी का संकल्प उठेगा और वो हाजिर हो जाएगा, यह है सतयुग। और यहां संगम पर क्या है, कलयुग में तो आप जानते हैं कि एक काम को करने के लिए कितने संकल्प उठाने पड़ते हैं। वैसे तो कह देते हैं पहले सोचो फिर बोलो, आप सोचो, क्या व्यक्ति प्रैक्टिकल कर सकता है कि मैं पहले सोचूं फिर बोलूं, पहले सोचूं, हो ही नहीं सकता। ये तो नेचुरल होना चाहिए कि नहीं? नेचुरल जो चीज है वो अपने आप बोली जाएगी। किसी में क्रोध है तो उसको सोचना थोड़ी पड़ता है मैं क्रोध करूं, यहां ऑटोमेटिक बोलता है, नहीं है तो शांति बोलती है, इसलिए नेचुरल। तो हमारी हर चीज नेचुरल हो, कि एक संकल्प किया, आज क्या होता है पहले पीछे के संकल्प आते हैं, ये था ऐसे किया था, मान लो बाबा कहे समाप्ति करो, समाप्ति, इतना कुछ समेटना पड़ेगा, पहले तो संकल्पों की समाप्ति नहीं है, इसलिए पीछे के ना आए फुल स्टॉप लगे, फिर आगे के ना आए चिंता ना आए भय ना आए, अरे ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے, میں اٹھ پکڑنے تو لگا ہوں کہ گر گیا تو. تو بابا کہتا ہے بھے, آج بھی بابا نے کہا تھا بھے. تو اس لیے نہ آگے کے آئیں نہ پیچھے کے آئیں, اور فالتو کے نہ آئیں پھر دوسروں کے نہ آئیں, کہ آپ ہیں, آپ جیسا بابا کہتا ہے دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ہر ایک آتما اسپیشل ہے, ہر ایک آتما کا رول ہے, اور خاص طور پہ بابا کے گھر میں آئی ہوئی آتمائیں تو وشیش ہی ہیں. تو اپنی وشیش آتما کو چھوڑ کر, اب آپ اپنی وشیش آتما کو چھوڑ کر دوسرے کی کاپی کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنا بھی رول گیا. کہتے ہیں نا کوا ہنس کی چال چلا اپنی بھی بھول گیا. اس لیے پہلی بات بابا نے یہ کہی ہوئی ہے کہ میرا پارٹ وشیش ہے, میرے جیسا پارٹ کسی کا نہیں ہے, اور میرا پارٹ میں نے ہی بجانا ہے, برہما جی کا پارٹ برہما نے بجانا ہے, اس لیے مجھے کسی کی طرف نہیں دیکھنا. تو آدھی پریشانی تو آپ کی ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو سنکلپوں کو سمیٹنا پہلی بات تو کم کرو, اس کے بعد اس کی کوالٹی کو بڑھاؤ. اچھا کم بھی کر لیے تو کس طرح کے سنکلپ آئیں, ایسے تو نہیں کہ غصے کے سنکلپ کو سمیٹ لو تو پھر جو آئے تو زبردست غصہ آئے. کئی لوگ کوشش کرتے ہیں نا مجھے کرودھ نہ آئے, تو روکتے ہیں نہیں آیا, اچھا چھوڑو چھوڑو, پھر ایک بار اتنا زور سے آتا ہے کہ پچھلے کرودھ کو بھی بیٹ کر جاتا ہے. یہ کوئی جیتنا نہیں ہے, یہ کنٹرول کرنا. بابا کہتا ہے ختم کرنا. اس لیے ہمیں سنکلپوں کی ماترا کو گھٹانا ہے. پھر بات من پر آ گئی کہ من منا بھو مام ایکم, یہ ہمارا لکش ہے اور سارا کنیکشن من سے ہے. آپ کا دھن کہاں جائے گا؟ جہاں آپ کا من لے جائے گا. آپ کا تن کہاں جائے گا؟ جہاں آپ کا من لے جائے گا. آپ کے سمبندھ کہاں جائیں گے؟ جہاں آپ کا. تو ساری بات تو من کے اندر ہے نا, جس کو بابا سمرتی کہتے ہیں. آج بھی ساری مرلی سمرتی پر تھی کہ جیسی ہوگی سمرتی نیچرلی ویسی آپ کی ہوگی ورتی, ویسی ہوگی آپ کی درشٹی, ویسی ہوگی آپ کی کرتی. تو مین بات تو سمرتی کی ہے. تو ہم کو کتنی اچھی سمرتی ہے کہ دیکھو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو پکا ہے کہ دنیا کی 800 کروڑ آتماؤں میں ہم ہی ہیں جو بابا کی اس فوٹو کاپی آفس میں آئے ہوئے ہیں. جتنی مرضی اپنی ستیوگ سے لے کر پوری ایگزیبیشن, دنیا کی ایگزیبیشن بعد میں ہوگی, پردرشنی آپ اپنے ستیوگ کا چتر بڑھیا سے بڑھیا تھے تو ستیوگ میں تھے تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں. اچھا تریتا کا چتر اور بیچ کا چلو چھوڑ دو, سنگم کا چتر, مدھوبن کا چتر, فرشتے روپ کا چتر اور پرم دھام کا چتر, 5-6 تو البم لے کے جاؤ اپنے ساتھ. اور آپ کو اس کے لیے کاغذ کی ضرورت نہیں, آج کل تو پیپر لیس ہے نا, اپنے کمپیوٹر کے اندر بھر لو, مزہ آئے گا. جب چاہو پنے کھولو, جیسے کہ اپنے البم رکھتے نا, میں بچے کے روپ میں ارے یہ تھا, دیکھو مجھے کوئی پہچانتا ہے, میں پھر یہ تھا پھر یہ تھا. اس لیے بابا کہتا ہے اسی کو سدرشن چکر کہتے ہیں. اب ہم کو کرنا کیا ہے, اس من کو جو ادھر ادھر بھاگتا ہی رہتا ہے بھاگتا ہی رہتا ہے اس کو رستہ دکھانا. اپنے ہی من کو ہم نے رستہ دکھانا, کیونکہ ہمارا ہی من بھٹکتا رہے گا. کبھی چھوٹی سی بات آ گئی اس میں بھٹک گیا, ایک کو سنبھالا دوسری میں بھٹک گیا. تو بابا نے ہم کو گائیڈنس دیا ہے کہ من کو کس رستے پہ لگاؤ. یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں اپنے من کو اچھے رستے میں لگانا, یہ تو کوئی دو بات نہیں ہے نا. یہاں تو اچھے بننے کے لیے ہم آئے ہیں, اچھے بنانے کے لیے آئے ہیں, اچھی دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں. تو من کی سوچھتا بابا کہتا ہے اپنی بھی کرنی ہے اور دوسرے کی بھی کرنی ہے. تو من تو ایک سمپل چیز ہے. تو من کا میل کیا ہوتا ہے؟ بابا کہتا ہے من کے میل کو اگر سمجھ جائیں, اس کو دور کریں. بابا بھی ہمارے من کا ہی میل دھوتا ہے. بابا کہتا ہے جب تم میرے پاس آئے تو میں نے کیا کہا کہ تم گندے بچے ہو, چھیچھی بچے ہو, بیکاری بچے ہو, بھاگو یہاں سے؟ نہیں, کبھی کہا بابا نے؟ حالانکہ بابا کو پتا ہے अच्छा बीच में भी बाबा ने ज्ञान दिया, कुछ गलती करके आ गए, बाबा ने कभी कहा कि बच्चे तुमने ये गलती कर दी, क्या लेके आ गए मेरे पास? ना, बाबा एक ही बात कहता है, बच्चे पीछे को छोड़ो आगे चलो, कहता है क्यों कि जब तक आपके मन में अपनी गलतियां अपनी कमजोरियां अपनी याद आती रहेंगी तो मैल तो अंदर रहा। अब मैल को आप निकालना चाहते हो और मैल का ही आप सिमरन कर रहे हैं, मैल का ही आप वर्णन कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? इसलिए बहुत आसान तरीका है कि मन का मैल कोई कपड़ों के मैल जैसा नहीं है, हमें अपने मन को स्वच्छ करना है। तो पहली बात क्या है कि मन में अस्वच्छता क्या आती है? सिंपल बात है, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में कमी और कमजोरी देखना, अवगुण देखना, ठीक है। अब बाबा ने क्या कहा हुआ, मोटा स्लोगन है पर चिंतन क्या है, सबको पता है, बच्चा भी बता देगा, पर चिंतन क्या है, पर चिंतन क्या है, आवाज नहीं आई, पर चिंतन पतन की जड़ है, समझ में आ गया। अब हमने पतन से पावन बनना है या पतन की तरफ जाना है? तो अगर कोई भी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय को छोड़ दो, अगर कोई भी ब्राह्मण पर चिंतन करता है, और पर चिंतन भी दो प्रकार का होता है, एक तो दूसरे की कमी देखना और दूसरा दूसरे की अच्छाई देख के ईर्ष्या करना, यह भी पर चिंतन है, क्योंकि हमने दूसरे से क्या लेना है, आपको अपना भाग्य मिल रहा है, तो अपने आप की प्लेसमेंट शरीर के हिसाब से करना, यह है पर चिंतन। तो इसलिए अगर मन को, मन की खुराक है शुद्ध संकल्प, अगर मन को आपने हेल्दी बनाना है, मन को कोई सेब नहीं चाहिए, फ्रूट जूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मन की खुराक है शुद्ध संकल्प, ठीक है। अब आप बताओ क्या मुश्किल है, क्या कीमत लगती है किसी को, कोई मेहनत लगती है कि मैं शुद्ध संकल्प ना करूं? हम आए किस लिए यहां? नहीं तो और तरह के संकल्प के लिए तो दुनिया बहुत पड़ी है। इसलिए बाहर से आपको कुछ भी आए, आपने उसको कन्वर्ट करके, नेगेटिव को पॉजिटिव करके अपने लिए शुद्ध संकल्प करना। मान लो आप मांस नहीं खाते, हम तो मांस खाते नहीं, लेकिन मान लो कहीं आपको मांस की प्लेट दिख जाती है, तो आप ये तो नहीं कह सकते प्लेट क्यों ले आए मेरे सामने, नहीं, आप क्या करोगे, अपने मन में समानधारी बनोगे, अरे हम तो देवी देवता के घराने के, हम भारतवासी हैं, हम संपूर्ण अहिंसक हैं, ये चीज हे बाबा मैंने ना कभी खाई है, मेरे तो इससे घृणा है, कहते हैं कि नहीं कहते? इसी प्रकार से संकल्प है, आपको कितना भी को लपेट करके खराब चीज दे, आपने चेक, तीसरी आंख आपके पास है, मुझे चेक करना ये मेरे योग्य है कि नहीं। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का भोजन पहले चेक किया जाता फिर उनको खिलाया जाता है, ताकि उनके पास कोई गलत भोजन ना चला रहे। यहां भी राष्ट्रपति आएगा, कोई आएगा, तो उसका भोजन पहले वो खुद खा के चेक करते हैं। इसलिए बाबा कहता है आपको तो खुद ही चेक करना है कि मेरे अंदर क्या जाना चाहिए। सिंपल बात है, मनमना भाव होने के लिए, मन को भटकाने से बचाने के लिए, मन के अंदर जो मेहनत करके हम पुरुषार्थ करके खुशी भरते हैं उसको कायम रखने के लिए, पहली बात है आप अपने बटुए का ख्याल रखते हैं, पर्स का ख्याल रखते हैं, और मन के अंदर जो इतना बड़ा खजाना है उसके दरवाजे हमने खुले छोड़ रखे हैं, जब जिसकी मर्जी आए कुछ मर्जी ले जाए। तो बाबा कहता है पहली बात तो यह है कि सब कुछ आपके मन के अंदर जमा हो रहा है। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ना सिर्फ संकल्पों को कम खर्च करना, बल्कि संकल्पों को ऐसे श्रेष्ठ बनाना जिससे आप दूसरे के संकल्प को श्रेष्ठ बना के अपने आगे के 21 जन्म के लिए खजाना इकट्ठा करो। तो बाबा ये भी कहता अपना बचत का खाता देखो, अगर हम उधार चढ़ाते रहे और भी ज्यादा वेस्ट करते रहे, चलो ये जीवन चला भी लिया, बचत क्या हुई? तो मेन काम है बचत होगी, और बचत इन्वेस्टमेंट करके होगी कि आप अपने लायक दूसरे को बनाए, दूसरा फिर आगे सेवा करे, उसका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा। दादियां दादियां कैसे बनती हैं, आज मम्मा शरीर में नहीं है, लेकिन मम्मा कैसे महारानी बन गई कि उन्होंने जिनको बनाया ऐसे लायक बनाया, उन्होंने आगे बनाया, उन्होंने हमको बनाया, हमने औरों को बनाया, इस सारे का जो फाउंडेशन को उसको हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एक दिन भी अपनी संपूर्णता को डिले करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो समय है, ये समय हमारा फिक्स है, उसके अंदर हमने अपना घाटा डाल लिया। इसलिए समाप्ति शब्द कहा गया है। अब समाप्ति का अर्थ क्या होता है, किस चीज की समाप्ति? ना तो हमें डरना है, क्योंकि आत्मा की तो समाप्ति होती नहीं, ठीक है, शरीर तो वैसे भी आता जाता है, इसलिए डरना नहीं है। फिर आत्मा के अंदर क्या भरना है जो आगे जाए, आत्मा के अंदर से सब फालतू चीजें निकाल देनी है। जैसे डॉक्टर भी कैंसर को निकाल देता है और जर्म्स को निकाल देता है, दूसरे इसके अंदर शक्तिशाली संस्कार भरने हैं। तो ये समाप्ति जो है, शब्द बाबा ने कहा है कि कंप्लीट करो, अब पेपर पूरा होने का टाइम आ रहा है। पहले ब्रह्मा जी का पाठ चला, अव्यक्त ब्रह्मा जी का चला, विष्णु जी का चला, हमें इन्होंने बड़े प्रेम प्यार से रॉयल तरीके से हमें गुण सिखाते रहे, आराम से बच्चों को रखा, दुनिया के अंदर तूफान भी आ जाए बाबा कहता है मेरे बच्चे सेफ हैं, आपको सबको अनुभव है। अब कौन सा पाठ है, अब है शंकर जी का। समाप्ति का मतलब क्या होता है, अब पेपर पूरा हुआ, बाबा ने कह रखा है दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ड्रामा का अंत होने वाला, आपको यह भी पता है, ताकि आप उससे पहले पहले जो कुछ करना है कर लो। तो शंकर जी क्या करते हैं, बाबा ने कहा है ना कि शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाते हैं, योगी रूप में दिखाते हैं, शिव के आगे दिखाते हैं, या उसके आगे नंदी ज्ञान यानी ब्रह्मा बाबा दिखाते हैं, और फिर उसके गले में सांप दिखाते हैं कि उसने जो हमारा दुश्मन था उसको अपने गले में हार बना के रखा हुआ। फिर इसी प्रकार से सांप का विष्णु को भी दिखाते हैं, बाबा कहता है कि तुमने सांप को अपनी सैया बना लिया, सांप के ऊपर तुम डांस कर सकते हो, सांप तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, किसी भी दुश्मन को आप जीत लोगे वो आपका स्लेव बन जाएगा, दास बन जाएगा, कहेगा मेरी जान छोड़ो मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा, तो जिन्न भी आपकी सेवा करेगा। इसलिए बाबा कहता है समाप्ति का ये अर्थ है, अब लटकाओ नहीं, ना लटको ना लटकाओ, नहीं तो क्या होगा, एक एक दिन हम जितना डिले करेंगे उतना अपना ही घाटा करेंगे, करना तो है ही, तो किस किस के मरो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में। तो बाबा ने परवानों का भी मिसाल दिया हुआ, ये बाबा है शमा, बेस्ट परवाना वो जो सीधा ही जाके संपूर्ण समर्पण हो जाए, नंबर टू क्वालिटी जो थोड़ा घूमे हैं, अच्छा थोड़ा सा त्याग करता हूं करता हूं, सोच सोच के करे। तो इसलिए बाबा ने बताया हुआ है, एक होता है अर्पण, यज्ञ में अर्पण भी करते हैं, स्वाहा स्वाहा, थोड़ा घी डाल दिया, धीरे धीरे करते हैं, फिर संपूर्ण आहुति देते हैं जब पूरा हो जाता है, फिर अर्पण, उसके बाद समर्पण, वो भी इजी है। संपूर्ण समर्पण मीन्स मन मना भव 100% माम एकम, और वो होगा तो फिर दर्पण दिखेगा आपको कि हम क्या हैं। बाबा ने मुरली में कहा ना, अपनी तकदीर की तस्वीर शीशे में देखो कैसी बनाई है, भाग्य विधाता ने आपको कलम दिया हुआ है, और दुनिया की तकदीर कर्मों से बनती है, हमको भगवान ने खुद कलम दिया कि ले बच्चा जितनी मर्जी लंबी तकदीर की लकीर खींच लो, पर उसमें कट नहीं होने चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, तो हमारे हाथ में है। इसलिए सारी बात घूम फिर कर आती है मन के ऊपर, मन की स्वच्छता ऑटोमेटिकली तन की स्वच्छता लाएगी, वाणी की स्वच्छता लाएगी, दृष्टि की स्वच्छता लाएगी, संबंधों में स्वच्छता लाएगी, जो जिसको हम प्योरिटी कहते हैं। अगर सत्य को जानकर सत्य को प्राप्त करके भी उसमें असत्य मिला लिया या असत्य को उसमें से निकाला नहीं, तो प्योरिटी की तो परसेंटेज हो जाएगी। پھر جب پیورٹی کی پرسنٹیج ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ جیسے آنکھ ہے، اب آنکھ ہی آنکھ تو آنکھ ہے، اگر آپ کی آنکھ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے کہتے ہیں اندھوں نے ہاتھی دیکھا، آپ کو پتا ہے اندھوں نے ہاتھی دیکھا، اندھے سچ بول رہے ہیں، کوئی اندھا جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کیا کہتا ہے؟ ہاتھی کھمبے کی جیسا ہوتا ہے، بیچارہ دیکھ رہا ہے پاؤں کو، ہاتھی رسی کی جیسا ہوتا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اچھا اگر کسی کی آنکھ کمزور ہے، بالکل اندھا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں دکھ رہا ہے کوئی ہے، وہ دکھ رہا ہے کوئی ہے، پر یہ پتا نہیں پرش ہے یا استری ہے، کتنے فاصلے پر ہے، میرا دشمن ہے یا متر ہے، جیسے کیٹریکٹ والی آنکھ ہوتی ہے۔ اچھا جتنی ہماری آنکھ کلیئر ہوگی اتنا ہم کو بالکل کلیئر دکھے گا کہ یہ ویکتی ہے، اتنی دور ہے، اس سے مجھے کیسا بہیو کرنا۔ تو من کی آنکھ جس کو کہتے ہیں، من کی آنکھ کھول رہے، تو ہماری من کی آنکھ میں سرما بابا روز لگاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا برہما کماریاں سرما لگاتی ہیں، کون سا سرما لگاتے ہیں؟ گیان کا انجن لگاتا ہے، تو آنکھ کی روز صفائی بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھ میں مٹی، دھول، دھند، شنشے، اس پرکار کی چیزیں، وہم، اہم، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ تو آپ کو پھر کلیئر دکھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کلیئرٹی کے حساب سے باقی سب کچھ آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گا۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر آنکھ دھندلی ہے، روز ہم گیت بھی سنتے ہیں، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے، ٹیمپریری بھی آنکھ لگ گئی، اگر چوکی دار کی آنکھ ٹیمپریری لگ جائے تو لٹ جائے گا۔ اس لیے ہماری آنکھ دھندلی ہوگی تو ہر چیز میں ہمیں کنفیوژن ہوگا، کروں کہ نہ کروں، ایسے کروں کہ ایسے کروں۔ اور جتنی کلیئر ہوگی، اس لیے بابا نے کہا ہوا ہے کلین مائنڈ کلیئر انٹلیکٹ، من صاف کرو گے تو بدھی آپ ہی صاف ہو جائے گی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے من کو، آپ کا ہی من ہے اور کچھ نہیں کرو، موٹے روپ سے شدھ سنکلپ من کا بھوجن ہے۔ اور شدھ سنکلپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو بابا نے موٹا ہے بہت آسان بتایا ہوا ہے، اپنے من میں کوئی بھی اشدھ سنکلپ آنے نہ دو۔ اب یہ بھی پرابلم ہے، اگر من کمزور ہے تو بیماری تو آ جائے گی اپنے آپ۔ اس کو پاورفل بنانے کے لیے صرف دو شبد ہیں، وہ کیا ہے؟ بابا کہتا ہے، جو انگلش میں کہتے ہیں اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، کہ آپ کام ہی ایسا کرو جو آپ اتنی ٹھنڈی ہوا پھینکو کہ آپ کو گرم ہوا اثر ہی نہ کرے۔ سمندر کو کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، سمندر کو کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ آگ بجھ جائے گی، سمندر تو سمندر ہے۔ اگر آپ پریم کے ساگر کے بچے ہیں، آپ کو کوئی گھرنا پیدا کر سکتا ہے؟ اصلی والے، یہ نہیں کہ بہت ساروں سے پریم، ایک سے گھرنا، وہ نہیں چلے گا۔ کمپلیٹ، اس لیے کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں سمپورنتا اور سمپنتا سماپتی سے آئے گی۔ تو سماپتی کس چیز کی کرنی ہے؟ آپ نے رات کی سماپتی کرنی ہے تو ایسے تو نہیں اندھیرا پھینکو گے، دن نکال دو، رات آپ پہ سماپت ہو جائے گی۔ تو لاسٹ بات یہ ہے، کیول اور کیول جو ہم گیان سنتے ہیں، جو ہم یوگ لگاتے ہیں، ایک ہی شبد اپنے اندر دھارن کر لیں، وہ یہ ہے، ہمیشہ سب کے لیے من میں شبھ بھاونا اور شبھ کامنا رکھنی، بیڑا پار۔ تالی بجاؤ، آپ کو کتنا شاندار فارمولا ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ من کا بھوجن ہے، ہنس جو ہے موتی چگتا ہے، من کا بھوجن ہے، ہم ہولی ہنس ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا دوسرا کون ہے، کیا کر رہا ہے، وہ جانے۔ ہم نے سب کے لیے شبھ بھاونا، شبھ کامنا رکھنی ہے۔ تو گلاب کا پھول تو خوشبو ہی دے گا، کہیں ڈال دو، اس نے تو خوشبو دینی ہے، تو خود اس کو خوشبودار بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اس کو کانٹے تنگ ہی نہیں کر سکتے، اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اس لیے کیول اور کیول میرا من ہے، مجھے اس کو دیوتا کا من بنانا ہے، सुखदायी मन बनाना है, ऑटोमेटिकली बनाना। इसके लिए बाबा ने आज भी एक बहुत जबरदस्त वार्निंग की बात बताई है कि अपना साथी शिव बाबा को रखना। चाहे बाबा कहते हैं निमित्त आत्मा भी हो, महारथी आत्मा भी हो, कोई भी आत्मा हो, वो आपके सहयोगी हैं, साथी नहीं है। साथी अलग चीज है, वो भी उसके साथी बनाए हुए हैं। तो हमें अपना परमानेंट साथी शिव बाबा रखना है, और शिव बाबा को साफ बच्चे पसंद हैं, स्वच्छ बच्चे पसंद हैं। तो हम अपने शुद्ध संकल्प रख के जाएंगे तो आगे के शुद्ध संकल्प पिछले को आप ही उड़ा देंगे, तो बाबा के प्यारे बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति।